अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 14 है नॉवेल डॉक्टर दुआगु। पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 14। फिर वो बावची खाने की तरफ झपटा। जौलिया पीछे थी। बावची खाने में खासी अबतरी नजर आई। जौलिया सुलेमान पर चढ़ा बैठा मूसों से इसकी तमाशा कर रहा था। सुलेमान के हलक से अधूरी गालियां फिसली रही थी और नर्स दूर खड़े पीछे जा रही थी। अबे ओ मर्दूत इमरान धाड़ा, ये क्या हो रहा है? छोड़ इसे वरना ठोकरे मारूंगा। नहीं बॉस, तुम दखल ना करो, जौसफ कुदराया। ये नुतफा हराम मुझे औरत के सामने छेड़ता है, मार डालूंगा। नहीं सुना? देख जौसफ, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि जख्मी हो। जौसफ उछल कर अलग हट गया और सुलेमान ने झपट कर हड्डी काटने वाला छुरा बैग से निकाल लिया। खबरदार हो सुलेमान, नाजायज, मार डालूंगा साले को, आप ना बोलिए। इमरान ने आगे बढ़कर दाहिने हाथ से इसे धक्का दिया और वो मेज से जा टिका। खाल खींच लूंगा, इमरान आंखें निकाल कर बोला। सुलेमान छुरा मुट्ठी दबाए खड़ा हांफता रहा। इमरान ने नर्स को इशारा किया कि वो भी कमरे में जाए। जब वो चली गई तो इमरान ने सुलेमान का गिरीबान पकड़कर झटका देते हुए कहा, मौका महल भी देखा कर। बस साहब जाइए, मुझे ज्यादा बोल ना कीजिए। साले को गिरा कर खाने में जमाल गोटा ना दिया तो कुछ भी ना किया। हाँ, आप कायदे की बात की तूने, अगर ये देख कि मुकाबिल तुमसे लगड़ा है तो हमेशा लिपट झपेट से गिरेज करो। जमाल गोटा, अब तूने ताहिर की है अपनी जहानत, बस अब चल चुके हैं हंडी में। उसे समझा कर फिर ख्वाबगाह में आया। यहाँ नर्स और जौलिया एक दूसरे से कुछ समझने की कोशिश में मजबूर नजर आ रही थी। जौसफ कुछ के कमरे में बैठा हांफ रहा था। इमरान को देखकर इसने सर उठाया, इसे घूरता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। अपनी सजा सुनो, इमरान घुराया। एक हफ्ते तक तुम पर इस घर का खाना पानी हराम। क्यों? बस मेरी मर्जी इसके खिलाफ हुआ तो खाल उतारूं दूंगा, समझे? यहाँ का पानी भी ना पीना एक हफ्ते तक। अच्छा, इसने गुस्सीली आवाज में कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। ये कोई नई बात ना थी, इस किस्म की झड़पें आए दिन होती रहती थी। इमरान तो ख्वाबगाह में वापस आया। ये तुमने क्यों अपनी मट्टी पलीद कर रखी है? जौलिया ने इससे कहा। हजारों बार यही जुमला सुन चुका हूँ, अब कोई नई बात कहो। ये फ्लैट कसाब की दुकान मालूम होती है। बहरहाल कुछ मालूम तो होता है जो बिल्कुल कुछ ना मालूम होने से बेहतर। मैं अब यहीं रहूंगी, बस फिर देखना ये फ्लैट आइंदा क्या मालूम होगा। मैं संजीदगी से कह रही हूँ, मैं कब गैर संजीदा हूँ। ओ बराए करम, आप लेट जाइए जनाब, नर्स ने कहा। शुक्रिया, इमरान मसैरी पर नाराज होता हुआ बोला। लेकिन वो प्राइवेट मुंसल का टेप रिकॉर्ड पर ब्लैक जीरो का पैगाम सुनने के लिए बेचैन था। समझ में नहीं था कि किस तरह यह ख्वाहिश पूरी करे। इतने में सुलेमान ने कहा, साहब आधे घंटे की छुट्टी दीजिए। क्यों?
जमाल गोटा जा रहा हूँ। अबे क्यों, शामत आई है?
नहीं साहब, मैं तो मानूंगा।
अच्छी बात है, दफा हो जाओ। सुलेमान के जाने के बाद इमरान ने जौलिया से पूछा, तुम कब जाओगी? लेकिन मेरे जाने के बाद जौसफ तो मौजूद ही रहेगा। जौलिया ने जहरीले लहजे में कहा और मनी हेस नजरों से नर्स की तरफ देखने लगी। वो इसका मतलब समझ गई थी और इसके कान की लोहे तक सुर्ख हो गई थी। इमरान खनकार कर बोला, इस कमबख्त को भी निकाल बाहर करूंगा, मैं यहीं रहूंगी। ध्रुव घंटाल के मिजाज के खिलाफ हुआ तो मेरी निजी जिंदगी में कोई भी दखल नहीं हो सकता। जौलिया झुला कर बोली। तुम्हारी मर्जी, इमरान ने बेबसी से कहा। अगर इसे जरा बराबर भी मौका मिल जाता तो वो अपने निजी ही फोन पर ब्लैक जीरो से रابطہ कायम करके उसे सिचुएशन से आगाह करते हुए कहता कि वो एक्स टू की आवाज़ें जोलिया के मुखातिब करे और इससे कहे कि वो इमरान के फ्लैट से चली जाए। क्या सोचने लगे, जोलिया ने छेड़ा। ये सोच रहा हूँ कि शादी ही कर लेने में आफियत है। सिर्फ सोच ही सोच कर क्यों रह जाते हो? कोई माकूल लड़की नहीं मिल सकी। कैसी लड़की चाहिए? मेरी पसंद की फहरिस्त तवील है, मजरमन ऐसी लड़की होनी चाहिए। जुमला पूरा होने से पहले ही जोसेफ इजाज़त तलब करके कमरे में घुस आया। अब मैं क्या करूं बॉस, इसने जमा ही लेकर कहा। बकिया तीन बोतलें भी घर ही में रखी हैं, पीऊं या ना पीऊं? क्या बकवास कर रहा है, जोलिया ने हैरत से पलके झपकाई। मेरे अलावा यहाँ और सब पागल हैं, इमरान बड़बड़ाया और फिर जोसेफ से बोला, पियो, शराब पर कोई पाबंदी नहीं है। थैंक्स बॉस, इसने एड़ियाँ बजाई और ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गया। इसी वक्त फोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से कोई गैर मुल्की मिस्टर इमरान की हाथ लगाए जा रहा था। इमरान स्पीकिंग, इमरान ने नाक भौंहें पर जोर देते हुए कहा। शायद वो आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रहा था। दौरान दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, हाउ डू यू डू? ओके बॉय, अभी तुम्हारे बाप से तुम्हारा नंबर मालूम किया था। कैसे हो? तुम्हारे बाप ने बताया कि दोबारा ऑपरेशन हुआ है। बहुत लापरवाह हो तुम, आराम करो। शुक्रिया, मैं आराम ही कर रहा हूँ। कलारा तुमसे मिलना चाहती है। अरे बाप रे, इमरान ने नर्स और जोलिया की तरफ देखते हुए उर्दू में कहा। क्या कहा, दोहराओ। कुछ नहीं, ठीक आने वाली थी। कलारा भी ठीक है, तुम अपनी रहायशगाह का महल बखू बताओ। कलारा वहीं आई, वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। इमरान इसे अपने फ्लैट का महल बखू समझाने लगा। फिर वो रिसीवर रखकर ऐसे अंदाज में कुड़ रहा जैसे दम ही तो निकल रहा हो। क्यों, क्या बात है, नर्स ने भौंकला कर पूछा। कुछ नहीं, जख्म में तकलीफ तो नहीं? नहीं। कोई आ रहा है क्या, जोलिया ने पूछा। तुम किसी को घर का पता बता रहे थे। कलारा ढोरंग मिजाज पर ही से के लिए आई है। क्यों आ रही है? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी इससे मुलाकात महज इत्तेफाकिया थी। थी तो इत्तेफाकिया ही, लेकिन दूसरे इत्तेफाकात भी पेश आ सकते हैं। मैं नहीं समझ सकती कि तुम क्या करते फिर रहे हो। मैं तो आराम कर रहा हूँ, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। जोलिया खामोश होकर इसे गूंने लगी। तुम आराम नहीं कर रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम रसीद हो रहे हो। वो कुछ देर बाद गुदाई, चलो यही सही, चैन तो लेने दो किसी तरह। जोलिया खुली बैठी रही, फिर थोड़ी देर बाद उठी, वेंटी बैग उठाया और कुछ कहे सुने बगैर बाहर चली गई। इमरान ने हालांकि इत्मीनान की सांस ली, लेकिन हकीकतन मुतमईन नहीं हो गया था। जोलिया से अच्छी तरह वाकिफ था। किसी मसले पर बजाहिर सुपर डाल देने के बावजूद भी वो दाऊद घाट से बाज नहीं आती थी। कुछ देर बाद इसने जोसेफ को आवाज़ दी और इसके आने पर बोला, तुम दरवाजे पर ठहरो, अगर जोलिया दोबारा अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो कॉल बेल का बटन दबा देना। जोसेफ तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर वापस चला गया। ये कौन साहिबा थी, नर्स ने इमरान से पूछा। नामाकूल थी ना, खुद इमरान पूछ बैठा। जी जी, भला मैं क्या जानूं, वो हंस पड़ी। ये दुनिया बड़ी वाहियात जगह है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। अगर यहाँ किसी पर कोई एहसान करो तो वो फौरन ही इसका बदला चुका देना चाहता है। इन साहिबा को कल ही मैंने बहुत बोर किया था, लिहाजा अब वो भी बहुत बेतकल्लुफ़ मालूम होती है। मालूम नहीं होती बल्कि हैं, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। वैसे आप इन्हें मुंह नहीं दिखाना चाहते, क्यों? मैंने यही महसूस किया है। तुम्हारा ख्याल किसी हद तक दुरुस्त है, अब कोई दूसरी साहिबा भी आ रही हैं। हाँ, क्या तुम इस सिलसिले में फिक्रमंद हो? नहीं, लेकिन आखिर इस औरत ने मेरे साथ तौहीन आमेज बर्ताव क्यों किया था? नहीं तो, इमरान ने हैरत से कहा, मैंने नहीं महसूस किया, वरना आखिर वो मुझे यहाँ से भगा देने पर क्यों तुल गई थी? भगा तो नहीं सकी, तुमने महसूस नहीं किया। फोन पर जिस लड़की की आमद की इत्तला मिली थी के मुतालिक भी तो वो बहुत कुछ कहती सुनती रही थी। बेहया मालूम होती है। मेरा ख्याल है कि आपको इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं है। बस बिल्कुल बिल्कुल, इमरान ने कहा और आहिस्ता ऐसा को रहने लगा। क्या बात है, प्यास लगी है शायद? थैली में पानी लाती हूँ, इसने कहा और कमरे से चली गई। इमरान ने झपड़कर फोन पर ब्लैक जीरो के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर जल्दी जल्दी कहने लगी, देखो जोलिया को मेरे फ्लैट में आने से बात रखो, X2 की आवाज़ में तंजिया कर सकते हो। हाँ, वो अपने फ्लैट ही में मिल सकेगी, अभी अभी यहाँ से उठकर गई है। रिसीवर रखकर वो नर्स की तरफ मुतवज्जा हो गया जो पानी का गिलास लिए कमरे में दाखिल हो रही थी। इसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ भी गूंजी। इमरान ने पानी का गिलास लेते हुए कहा, जरा देखना तो कौन है। लेकिन दूसरे ही लम्हे में जोसेफ किसी का मुलाकाती कार्ड लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। कार्ड पर नजर पड़ते ही इसने ठंडी सांस ली। कार्ड पर तहरीर था, इमामुल जाहिलीन, कतील अदब, उस्ताद महबूब निराले आलम। बुलाओ, इमरान को रहा और उस्ताद ऐसी धड़ में नजर आए कि इमरान आके फाड़ कर देखने लगा। शेरवानी के बजाय पतलून, जैकेट और टाई में थे। कांधे से चने का थैला लटक रहा था और हाथ में टीन का भूंपो जिसमें मुंह डालकर चना कड़क की आवाजें लगाते थे। सुना है गोली लग गई है? इन्होंने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। ठीक सुना है उस्ताद, तशरीफ रखिए। लेकिन उस्ताद तशरीफ कहाँ रखते, वो तो कंखियों से नर्स को देखे जा रहे थे। मैंने कहा, उस्ताद जी जी हाँ, उस्ताद चौंक कर बोले, आज मैंने इतिहास से मिगान का मुकीम मालूम हूँ। इमरान ने इस तरह सर हिलाया जैसे पूरी बात समझ में आ गई हो। अक्सर उस्ताद पर बड़े बड़े नामानुस अल्फाज बोलने का दौरा पड़ता था और वो महल इस्तेमाल की परवाह किए बगैर बेतुकान इस किस्म के अल्फाज लुढ़काते चले जाते थे। कभी कभी नए अल्फाज भी ढाते इस किस्म के दौरे अमूमन इसी वक्त पड़ते थे जब आस पास कोई औरत भी मौजूद हो। गोली कैसे लगी? बस लग गई किसी तरह, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। आप सुनाइए, कैसी गुजर रही है? रात को खटमलों की वजह से नींद नहीं आती। यहाँ खटमलों के ना होने की वजह से नींद नहीं आती। मैं आज बहुत मगमूम हूँ, उस्ताद ने कहा। कौम की बदहाली ने मुझे परेशान कर रखा है। नर्स उठकर चली गई और उस्ताद ने एक ठंडी सांस ली, फिर इस तरह चौंके जैसे कोई खास बात याद आती हो। इधर उधर देखकर आगे झुके और आहिस्ता से बोले, ये दूसरी कब आई? आती जाती ही रहती है, इमरान ने लापरवाही से कहा। फिर बोला, मगर आप मंगमूम क्यों हैं? मेरे ख्याल से तो कौन भी ठीक ठाक ही है। नहीं जनाब, ये बेपरदगी, चिड़े चिड़िया, मैं अनकरीब जज करने चला जाऊंगा। हुआ क्या है, कोई खास हादसा? जी हाँ, कल रेनू में मेंटी शो देखने चला गया था, देर हो गई थी, खेल शुरू हो चुका था। हाय क्या फिल्म है, डॉक्टर नो देखी आपने? साले लोंडिया को चूड़ीदार पजामा पहना देते हैं। चूड़ीदार पजामा नहीं उस्ताद, उसे जीन कहते हैं, इमरान ने कहा। चलिए जीन ही सही। हाँ तो खेल शुरू हो चुका था, दो लड़कियों के पास जगह मिली थी जिनके साथ कोई मर्द नहीं था। मेरे पास वाली लड़की अंधेरे में चमक रही थी, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं इसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। लिहाजा फिल्म देखने के बजाय आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखता रहा। यकदेख वो अपने साथ वाली से बोल देखे तो कमबख्त बार बार पागलों की तरह घूमने लगता है। मुझे तो डर लग रहा है, तुम तुम इधर आ जाओ। ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही गई थी कि मैं भी सुन सकूं। इंटरवेल में इन्होंने जगह बदल ली। दूसरी लड़की बड़ी तेजी से निकली, मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई और इस तरह घूमने लगी जैसे फाड़ रही तो खाएगी। फिर कहने लगी, लो देख लो अच्छी तरह, ताकि चैन से फिल्म तो देख सको। इमरान भाई, मेरा तो दम ही निकल गया। अरे बाप रे, मुझे आपसे हमदर्दी है उस्ताद, इमरान ने संजीदगी से कहा। इतने में नर्स फिर वापस आ गई और उस्ताद बोले, इंसानी तहजीब की महज बाकी और मस्कुई मनाकहर बहुत ज़रूरी है। गालिब ज़ौक दाग वगैरह ने मशरूबाती इनफर्जियत की तफसील में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन तजरीदी जाब्ते की अशराकियत मशरू की ऐराब की सिन नहीं थी। वल्ला आपने तो नसर ही में सनत मुस्तवाल अलजहाज पैदा कर दी उस्ताद, इमरान ने खुश होकर कहा। मैं गालिब को भी ललकार सकता हूँ। बेशक बेशक उस्ताद, जरा चना कड़क तो सुना दो। उस्ताद ने भोपू उठाकर मुंह से लगाया और शुरू हो गए। PSEH के हसीन मेरे चने से नमकी, भोले भाई खैरुद्दीन, पापड़ आने के तीन, चना कड़क। सुनाते रहिए, इमरान उठता हुआ बोला, मैं अभी आया। वो प्राइवेट फोन वाले कमरे में आया और दरवाजा बंद करके टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑन कर दिया, लेकिन आवाज का जम नहीं बढ़ाया। ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर द्वागू होश में आ गया। इसने बताया कि आपका हबशी मुलाजिम छुरा निकाल कर इस पर झपटा था। पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कर ली है, ओवर एंड ऑल। फिर आवाज आई, जोसेफ को हटा ही दीजिए वरना उलझनों में इजाफा हो जाएगा। इमरान इंतजार करता रहा, शायद कोई और पैगाम भी हो, लेकिन सिर्फ फीते के सरकने की आवाज आती रही। उसने टेप रिकॉर्ड बंद कर दिया। कमरे में वापस आया, उस्ताद इसी जोश खरोश के साथ चालू थे। नर्स हंस रही थी, कभी कभी भौंपो उठाकर दांत निकालते थे। आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, नर्स ने कहा। हाँ नहीं तो, इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। उस्ताद अभी तक चने बेच रहे थे, बमुश्किल तमाम सिलसिला खत्म हुआ। इमरान खामोश होकर कुछ सोच रहा था। डॉक्टर ने उस्ताद से कहा, आप एक उमदा सा गर्म सूट सिलवा दीजिए। उस्ताद ने दांत निकाल दिए, फिर कुछ सोच कर गर्दन अकड़ाई और बोले, 5 सूट केटरे खा गए, वो भी खा रहे हैं। मेरे दादा, हज से निकलोगे? ये निकलूं कहाँ से है जनाब, नर्स ने पूछा। लखनऊ वाले प्यार से लखनऊ को कहते हैं, इमरान बोला। मेरे वालिद कर्नल थे, उस्ताद इनकी गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर बोले, अतीक भाई सब जानते हैं। मैंने कहा था सूट सिलवा लीजिए। क्यों? ऐज कराऊंगा उस्ताद तुम्हें, इमरान मेज से कलम उठाकर एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखता हुआ बोला। मेरे ही पैसा कलफ वार्ड कंपनी में ले जाना, वो नाप लेकर सूट सी देंगे। जिस दिन कहीं जाकर चाय दे देना, इसके बाद सूट मैं मंगवा लूँगा। मुझे कुशा अदा करना पड़ेगा, उस्ताद ने अकड़ कर पूछा। फिक्र ना कर, उसी रकम के चने चबा देना मुझे। नाकू, नर्स ने हंसी जब्त करते हुए कहा और उस्ताद इसे सिर्फ देख कर रह गए। नहीं भाई, पूछना मेरा फर्ज था, उस्ताद ने कहा। एक बार जमील साहब ने कहा था कि तुम सिर्फ 42 रुपये जमा कर लो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। पहले सूट सिलवाओ, शादी भी बाद में होती रहेगी, अब जाओ। यानी कि बिल्कुल अभी चला जाऊं? यकीनन देर ना होनी चाहिए। साथ चले गए। अब इमरान ने जोसेफ को आवाज़ दी, वो आया और एरिया बजाकर अटेंशन हो गया। इमरान ने अरबी में कहा, तुमने डॉक्टर दवागू पर छिरा निकाल लिया था। मैंने, जोसेफ का मुंह हैरत से फैल गया, फिर वो हंसने लगा। मजाक करते हो बॉस, मैं संजीदा हूँ। इसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो मुझसे मिलने आया था। मेरे मुलाजिम जोसेफ ने छुरा निकाल कर इस पर हमला करने की कोशिश की थी। झूठा है वो हरामी। मैंने आंख उठाकर देखा भी नहीं था इसकी तरफ। लेकिन पुलिस को कैसे यकीन दिलाओगे? सड़क पर भी बहते रहे लोगों ने इसे यहां से निकलकर भागते देखा होगा। मैं क्या बताऊं बॉस, पता नहीं उस वल्लुर खबाइस ने झूठ क्यों बोला। उसे जहन्नुम में झोंको। ये बताओ अगर पुलिस यहाँ आ गई तो? मैं क्या बताऊं बॉस, गिरफ्तार हो जाऊंगा। इमरान ने फोन पर ब्लैक जीरो के नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोला, इमरान स्पीकिंग, जोजफ वाला मामला मालूम हुआ, तुम एक वन वैन में भेज दो। रिसीवर रखकर उसने जोजफ से कहा, तुम्हें अभी राणा तेवर अली वाले महल्ले में जाना है। बहुत अच्छा बॉस, लेकिन अगर वो गिरफ्तार करने आए तो? नहीं, उसकी नौबत नहीं आ सकेगी, इमरान ने कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि फयाज ने ज्वालिया वाला मामला निमट जाने के बाद अपने आदमी वहां से हटा लिए होंगे। रह गया रहमान साहब का कोई आदमी तो इसके अलावा और किसी से सरोकार नहीं हो सकता। वो तो इसलिए होगा कि खुद इसकी निगरानी करके इसके मुतालिक सारी इतलात रहमान साहब पहुंचाता रहे। जाओ तैयारी करो, उसने कुछ देर बाद जोसेफ से कहा। फोन की घंटी बजी, इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर अली इमरान। इमरान स्पीकिंग, मैं दुआगू हूँ। बड़ी अच्छी बातें फरमाइए। क्या तुम्हें मालूम हुआ? क्या मालूम हुआ मेरे मुतालिक? बस इतना ही जानता हूँ कि आप चीखते हुए भागे थे। मैंने सोचा कोई खास बात नहीं, क्योंकि मेरी कुर्सियों में भी खटमल बकसरत हैं। ओ, इमरान संजीदगी से गुफ्तगू कर, मैं बड़ी मुश्किलात में पड़ गया हूँ। मुझे इस पर मजबूर किया गया था कि मैं वो ड्रामा स्टेज कर दूँ। मैं बिल्कुल नहीं समझा डॉक्टर, मुझे तुम्हारे नेगरू मुलाजिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी है। कैसी रिपोर्ट? यही कि वो मुझ पर छुरा लेकर दौड़ा था। माई गुडन्स, इमरान मुतैयरन अंदाज में चीखा। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी? ओ सुनो तो सही, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे शारायाम पर गोली मार दी जाती। इसने यही धमकी दी थी। किसने? ओ तुम समझते क्यों नहीं? अरे तो समझाए ना जल्दी से। मैंने तुमसे किसी नामालूम आदमी का तज़करा किया था, याद है? अच्छी तरह याद है। फोन पर इसी आदमी की तरफ से मुझे धमकी मिली कि अगर मैंने तुम्हारे सिलसिले वही कुछ ना किया जिसके लिए कहा जा रहा है तो मुझे शारआम पर गोली मार दी जाएगी, समझा? तो अब मेरी तरफ से दिल साफ हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल लड़के, मुझे तुमसे बेअंदाज़ा मोहब्बत हो गई है, क्योंकि तुम मार्था के महबूब थे। मार्था तुम नहीं समझ सकते कि वो मेरे लिए क्या थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि मैं क्या करूं? वो लोग यकीनी तौर पर जोजफ को गिरफ्तार कर लेंगे। जोजफ जो मेरा बॉडीगार्ड है, मैं खुद जख्मी हूँ। खतरात की सूरत में तनहा क्यों कर उनका मुकाबला कर सकूंगा? ओ गालिबन इसीलिए वो लोग जोजफ को तुम्हारे पास से हटा देना चाहते हैं ताकि मैदान साफ हो जाए और जो कुछ वो करना चाहते हैं बेधड़क कर गुजरे। अच्छी बात है जनाब, इमरान ने ठंडी सांस ली। तो फिर अब मैं भी अपना कफन मंगवा रखूं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, दुआगू ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनकता हो गया। फिर कुछ देर बाद एक बन गाड़ी आई और जोजफ को ले गई। नर्स के चेहरे पर तशवीश के आसार साफ पड़े जा सकते थे। बावर्ची कहाँ गया, इसने इमरान से पूछा। ओ फिक्र ना करो, तुम्हें मेरे लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा। अगर पकाना भी पड़ा तो क्या, नर्स ने लापरवाही से शानू को जम्बी दी। ओ शुक्रिया, इमरान ने बड़े फलूस से कहा। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कतई नहीं, ज़रूर पूछो। आखिर ये सब क्या हो रहा है आपके यहाँ? अरे वो कुछ नहीं, इमरान खामोखान झेप कर बोला। इस गैर मुल्की ने कहा था कि आप किसी लड़की के लिए 3 बजे रात को गोली खाने गए थे। लड़कियों की बातों का क्या एतबार, वो कुछ भी कह सकती हैं। गोली कैसे लगी?
जी तो मुझे भी नहीं मालूम, अंधेरे में किसी किस्म का हंगामा हुआ था।
दरियात हाल के लिए मैं बाहर निकला, बस गोली छेद गई बाजू को।
अंधेरे में लगी थी और क्या,
तब तो वो किसी दूसरे के लिए भी हो सकती थी।
यकीनन यकीनन, रुकताए हुए लहजे में बोला।
सुलेमान वापस आया था, इमरान ने इसे अजाज़ा के निकल जाने की इतला दी।
वो समझ रहा था कि तुम जरूर इंतकाम लोगे, इमरान ने कहा।
आपने भगा दिया उसे?
सुलेमान बुरा समूह बनाकर बोला, खैर मैं भी मुनान का बेटा नहीं, अगर इसकी वर्गित ना बनाओ।
यकीनन यकीनन, लेकिन तुम मुझे वैसे भी किसी मन्नान के बेटे हरगिज मालूम नहीं होते।
सुलेमान बुरा समूह बनाए हुए दूसरी जानी देखने मुड़ा ही था कि कॉल बैल की बैल बज उठी।
देख अब कौन है, इमरान पेशानी पर हाथ मारकर कुर्राहा।
सुलेमान बाहर चला गया, फिर शायद उल्टे पांव वापस आया और बोला, एक पुलिस इंस्पेक्टर है।
बुलाओ, इमरान कुर्रा कर बोला।
घर देख लिया है इन लोगों ने।
पुलिस इंस्पेक्टर, जिसके साथ दो कांस्टेबल भी थे, अंदर दाखिल हुआ और बैठने से कबल ही जोसेफ के मुतालिक सवाल कर बैठा।
ओ, वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा।
फरमाइए क्या काम है?
पुलिस हेडक्वार्टर में इसकी ज़रूरत है, एक हफ्ते के बाद ही मुलाकात हो सकेगी।
क्यों?
कुछ देर पहले एक हफ्ते की छुट्टी ले गया है।
कहाँ?
मैंने पूछा ही नहीं कि वो एक हफ्ते की छुट्टी क्यों ले रहा है
और कहाँ जाएगा।
रहता कहाँ है?
यहीं।
पहले कहाँ रहता था?
तब इंस्पेक्टर के लहजे में झुल्लाहट थी।
महकमा सड़क रसानी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज ही इसकी पिछली सकूत भी बता सकेंगे, क्योंकि इन्हीं की वसादत से मुझे तक वो पहुंचा था।
हैरत की बात है कि आप अपने मुलाजमीन से इस तरह बेखबर रहते हैं।
अजी कौन पड़े इन चक्रों में,
मैं तो इनसे कुछ पूछता ही नहीं,
पूछता हूँ तो मुझे भी भुगतना पड़ता।
अभी पिछले दिनों ये नामाकूल, जिसे सुलेमान कहते हैं, 2:30 बजे रात घर वापस आया।
मैंने पूछा कहाँ था,
कहने लगा घाटम सराय में।
अरे भाई वाह, क्या कर रहा था?
कहने लगा, जबान से कहते हुए शर्म आती है।
ये कहकर कमबख्त ने सारे कपड़े उतार दिए और नाचने लगा।
मतलब ये कि वहाँ शराब के नशे में नंगा होकर नाचता रहा था।
आप भी बहक रही हैं जनाब, मैं जोसेफ के मुतालिक पूछ रहा था।
वो कपड़े पहनकर पीता है, इमरान ने संजीदगी से कहा।
इसने डॉक्टर दुआबू का छुरा क्यों तान लिया था?
छुरा तान लिया था?
इमरान मुतहयराना अंदाज में उछल पड़ा। या आप क्या फरमा रहे हैं,
क्या ये गलत है?
मैं नहीं जानता।
ओ तो क्या दुआगू इसीलिए इस तरह भागा था यहाँ से?
इसका जवाब आप ही दे सकेंगे, सब इंस्पेक्टर ने खुश लहजे में कहा।
भाई इस वक्त यहाँ सिविल सर्जन साहब भी मौजूद थे,
इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर आप मुनासिब समझें तो इनसे भी पूछताछ कर लीजिएगा।
यकीनन पूछूंगा अगर वो मौजूद थे।
हम सबों ने कोशिश की थी कि दुआगू के इस तरह भागने की वजह मालूम कर लें, लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी।
जोसेफ इस वक्त कहाँ था?
ड्राइंग रूम में ही था।
दुआगू भी वहीं थी?
जी हाँ। सब इंस्पेक्टर थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला,
आप मुझे लिख कर दे दीजिए
कि आप उसके जुर्म से नावाकिफ थे, उसे एक हफ्ते की छुट्टी दी और इसकी मौजूदा जाए कयाम से वाकिफ नहीं।
बहुत अच्छा जनाब, इमरान ने कहा और मेज से पैड उठाकर इस पर कुछ लिखने लगा।
कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने आगे झुककर देखा और बोला,
अरे आप तो पूरा बयान लिखने लग गए।
मेरी दानिश में यही मुनासिब रहेगा, इमरान ने कहा।
अब आप इसकी सिद्दीकी सिवा सजन से भी करा सकें।
इमरान ने कलम एक जानब डालते हुए कागज इसकी तरफ बढ़ा दिया।
इंस्पेक्टर ने एक बार फिर पढ़ा और तय करके जेब में रखता हुआ बोला,
अगर इस दौरान में वो न जाए तो हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा।
पार्ट 14 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नावल डॉक्टर दुआगू का बकिया हिस्सा पार्ट 15 में समाप्त फरमाइए।